ओम शांति। दुनिया को स्वर्ग तो हम बना देंगे, लेकिन उस स्वर्ग में चलने के लिए हमें खुद को भी तो तैयार करना पड़ेगा। स्वर्ग में चलने के लिए क्या तैयारी करनी होगी, आइए इसी विषय पर हम क्लास सुनेंगे। हमारे बीच उपस्थित है रशिया से आए हुए आदरणीय सुधा बहन जी, आपका हम सभा में बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। आप बचपन से ही ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, 45 से अधिक साल आप ईश्वरीय सेवा में समर्पित है। लौकिक में दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने एमएससी एवं बीएड शिक्षा प्राप्त की। 1989 में जब से रशिया में ईश्वरीय सेवाएं शुरू हुई, तब से वहां के अनेक शहरों में जाकर आपने अनेकानेक सेवा केंद्रों की स्थापना की। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपक्रमों में आपका क्रियाशील सहभाग रहता है। रशियन गवर्नमेंट के साथ जुड़कर आपने कई सामाजिक उपक्रम ब्रह्मा कुमारी के द्वारा संचालित किए हैं। रशिया के सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ भी आपने कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। अनेक देशों की यात्रा कर आपने हजारों आत्माओं को ईश्वरी संदेश दिया है। रेडियो, टीवी तथा न्यूज़पेपर द्वारा आपके कई इंटरव्यूज प्रसारित हुए हैं। आप एक अच्छी लेखिका भी है। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है। वर्तमान समय आप मॉस्को एवं उससे संबंधित सेवा केंद्रों की कारोबार का निर्देशन कर रहे हैं। तो आइए हम क्लास सुनते हैं स्वर्ग में चलने की तैयारी। आदरणीय सुधा बहन जी।
ओम शांति। ओम शांति। स्वर्ग में चलने की एक ये भी तैयारी है कि सीट क्लास में आगे ले लें, तभी स्वर्ग में भी पहले पहुंचेंगे। बहुत बार बाबा मुरली में कहते हैं कि मैं आप बच्चों को राजयोग सिखाने आया हूं, प्रजा योग नहीं, राजयोग सिखाने आया हूं। और राजयोग सीखने से आप राजाओं के राजा बनेंगे। बहुत बार ये भी बाबा कहते हैं कि आपकी राजधानी की स्थापना कोई बाहुबल से, कोई जो बाहरी युद्ध होते हैं उसके आधार पर नहीं होती है, लेकिन आपके राजधानी की स्थापना योग बल के आधार पर होती है। कुछ समय पहले बाबा ने ये बात कही थी कि आप योगी बने हैं, आप योगी बने हैं अपनी स्वर्ग की राजाई को प्राप्त करने के लिए। तो एक छोटा सा प्रश्न उठता है। प्रश्न ये है कि योग तो हमारा सब्जेक्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम, मैं पर्सनल अपने से ये प्रश्न पूछूं, हर एक पूछे कि हम योग अभ्यास कर रहे हैं या हम योगी बने हैं। फर्क है दोनों में। हम योग अभ्यास कर रहे हैं या हमारा जीवन योगी जीवन है। है दोनों में फर्क? कुछ लगता है फर्क? लगता है ना कि एक होता है कि हम योग अभ्यास करते हैं, चाहे 8 घंटा भी करते होंगे शायद, कोई 4 घंटे, कोई थोड़ा और कम, थोड़ा और ज्यादा, लेकिन बाबा कहते हैं कि आप योगी बने हैं, माना योगी जीवन बना है, योगी जीवन। तो योगी जीवन और सिर्फ योग अभ्यास करने में बहुत फर्क है। अगर हमारा योगी जीवन है तो हम स्वर्ग के बहुत नजदीक हैं, स्वर्ग के बहुत नजदीक हैं। और अगर बाबा कहते हैं कि अगर आप नजदीक हैं स्वर्ग के, तो स्वर्ग के दृश्य आपको बहुत क्लियर दिखाई देंगे। जैसे हम अपने घर के नजदीक पहुंचते हैं तो कुछ साइंस उसके दिखाई देने लग पड़ते हैं कि अभी बस हमारा घर आया कि आया। तो अगर हम स्वर्ग के नजदीक पहुंच गए हैं या पहुंच रहे हैं तो हमें स्वर्ग के दृश्य बहुत क्लियर दिखाई देंगे। और अगर वो बहुत क्लियर दिखाई नहीं देते हैं, अनुभव नहीं होते हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि हम योग अभ्यास तो कर रहे हैं लेकिन हमारा जीवन योगी जीवन नहीं बना है। तो वास्तव में स्वर्ग में जाने की तैयारी करना माना ऐसा पुरुषार्थ करना जो हम कहें कि मेरा जीवन योगी जीवन है, क्योंकि योग से राजाई स्थापन होती है, ठीक है ना। तो योगी जीवन बनाने की तैयारी करना, उसके लिए पुरुषार्थ करना, वही स्वर्ग में जाने की तैयारी है। अब प्रश्न उठता है कैसे कैसे। अब हम अगर स्वर्ग की बात करें तो स्वर्ग को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं सतयुग, ठीक है ना। सतयुग अर्थात वहां सत्यता प्रधान है, वहां कोई भी झूठ नहीं बोलता है, कोई भी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है ना। छोटे बड़े सब कोई झूठ नहीं बोलता है, इसीलिए वो सतयुग कहलाता है। और उसको हम कहते हैं शांति और प्रेम का युग, ठीक है। अब हमें सतयुग में जाना है माना स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी है, तो इसका योग से कैसे कनेक्शन है। तो हमको ये सोचना है कि योग माना बाबा से योग, बाबा से संबंध। और बाबा कौन है दुनिया में, भगवान के लिए क्या कहते हैं, गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, परमात्मा गॉड इज लव, ऐसा भी लोग कहते हैं। परमात्मा और प्रेम जैसे कि ये सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। परमात्मा और शांति पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि परमात्मा और शांति अलग नहीं है। ऐसा नहीं शिव बाबा को कहना पड़ता कि आज मैं थोड़ा सा शांत कम हूं, वो उससे अलग नहीं है। तो अगर मेरा उसके साथ योग है तो उसका प्रूफ क्या है, उसका प्रूफ ये होगा कि उसके जो क्वालिटीज हैं, उसके जो गुण हैं, उन गुणों को हम अपने कर्मों में और अपने संबंधों में प्रयोग करते हैं। अगर मेरा उससे योग है तो, अगर योग नहीं है, अभी अभी हम योग लगा के उठेंगे और थोड़े समय के बाद गुस्सा कर लेंगे, अभी अभी हम योग लगा के उठेंगे और कोई हमारी सीट पर बैठ जाएगा तो थोड़ा सा उससे कोई नेगेटिव फीलिंग, कोई नफरत आ जाएगी, प्रेम खत्म हो जाएगा। तो ये योग का प्रूफ नहीं है। अगर मेरा उससे योग लगा है तो उसकी जो क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज को हम अपने कर्मों में आने देते हैं, कॉन्शियसली उसका प्रयोग करते हैं। हम अपने को ये एम देते हैं कि मैंने आज बाबा से योग लगा रही हूँ या योग युक्त स्थिति में हूँ, तो मुझे जो कुछ भी करना है, जिससे भी संबंध में आना है, जिससे भी व्यवहार में आना है, तो शांति से आना है। कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, मुझे सत्यता, शांति और प्रेम को नहीं छोड़ना है। ये स्वर्ग में जाने की तैयारी है। ऐसा नहीं कि हमने 8 घंटे तो योग लगा लिया और बाकी के 16 घंटे हम कोई और स्थिति में हैं। क्योंकि योग का दूसरा अर्थ ये भी होता है परमात्मा का संग, और हम लोग ये कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। तो रंग जो है उसकी क्वालिटीज का रंग हमारे ऊपर चढ़ता है अगर हमारा योगी जीवन है तो। तो इसलिए पहली बात है कि हम बाबा के गुणों को विशेष रूप से सत्यता, शांति, प्रेम और पवित्रता, इन गुणों को अपने व्यवहार में, अपने कर्मों में और अपने संबंधों में, मतलब प्रत्यक्ष रूप से आने दें उनको। हम चेक करें कि आपसे हम बातचीत कर रहे हैं तो इसमें मेरा सत्यता, सत्य स्वरूप काम कर रहा है, क्योंकि सतयुग में या स्वर्ग में जो आत्मा के सत्य गुण हैं, ओरिजिनल गुण हैं आत्मा के, वो बहुत इमर्ज रूप में उभरे हुए हैं। वहां हमको ये प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है कि मैं आत्मा हूं, हम हैं ही आत्मा, क्योंकि वो गुण बहुत नेचुरली उभरे हुए हैं और संगम युग पर हमको उनको उभारना पड़ता है। जब तक हम ये पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हम स्वर्ग में जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। बेशक हम रोज ज्ञान सुनते हैं, रोज योग लगाते हैं, सेवा भी करते हैं, मधुबन में भी आते हैं, कि स्वर्ग में जाने की तैयारी पूरे से नहीं हो रही है। एक ये बात है। दूसरी बात है कि हमको ये मालूम है कि स्वर्ग में देवी देवता बहुत कम वाचा में आते हैं। स्वर्ग में लैंग्वेज कौन सी है? स्वर्ग में कौन सी भाषा होगी? कौन सी? कौन सी? हिंदी भाषा, संकल्पों की भाषा। कौन सी भाषा होगी? देवनागरी। कौन सी भाषा होगी स्वर्ग में? स्वर्ग में ठीक है, बिल्कुल देवनागरी कहिए उसको या देवी देवताओं की दिव्य भाषा कहिए, वो तो होगी, लेकिन जो शब्दों की भाषा है उसका प्रयोग वहां बहुत कम होता है। देवी देवता एक दूसरे को दृष्टि से ही समझ जाते हैं, संकल्पों से ही समझ जाते हैं, उनको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं मगर हम लोगों की तरह नहीं, दृष्टि से समझ जाते, सिग्नल से समझते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली में कई बार, जो इशारे से समझे वो कौन? वो देवता। जो शब्दों से समझे वो मनुष्य, और जो शब्द से भी ना समझे, आगे डॉट्स है, बाबा उसके आगे कुछ कहते नहीं है। तो सतयुग में या स्वर्ग में देवी देवता एक दूसरे को इशारे से समझते हैं। अब हम इस लेवल पर कैसे पहुंचे? क्या होता है कि जब हम योग लगाते हैं बाबा से, या हमारा योगी जीवन बनता जाता है, योग हमारे जीवन का हिस्सा हो जाता है, मतलब मुझसे योग अलग नहीं है, जब ऐसा हो जाता है तो हम बाबा के समीप पहुंचते जाते हैं, ठीक है ना। जितना हम समीप पहुंचते हैं उतना हम समान होते जाते हैं। समीपता माना समानता, समानता की समीपता, ठीक है। तो हम सब जब योगी जीवन बनाते हैं तो हम सब बाबा के समीप हो रहे हैं, समीप 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 समान बनते जा रहे हैं। जब हम बाबा के समीप और समान होते हैं तो हम एक दूसरे के समीप और समान हो जाते हैं बाबा की क्वालिटीज में। बाबा तो बिंदु है ना, आप इमेजिन करिए, इधर से आपने, इधर से आपने, इधर सबने सबने सबने, तो हम एक दूसरे के कितना समीप आ जाएंगे। समीप किस में आते हैं? क्वालिटीज में, संस्कारों में समानता हो जाती है। अभी हमारे संस्कारों में बहुत भिन्नता है, लेकिन जितना योगी जीवन बनता है उतना हमारे संस्कारों में समीपता अर्थात समानता आती है। जब ये स्थिति पहुंच जाती है कि हम समीप और समान हो जाते हैं तो हम एक दूसरे को सिग्नल से ही समझ जाते हैं। हमको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं रहती, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं रहती है, इशारे से ही समझ जाते हैं, दृष्टि से ही समझ जाते हैं, संकल्प से भी समझ जाते हैं। संकल्पों को हम रीड करते नहीं हैं, ऐसा नहीं कि हम पुरुषार्थ करते हैं उसके लिए किसी के संकल्पों को रीड करें, नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। वही संकल्प आता है जो होना चाहिए। हम एक दूसरे को समझ जाते हैं। और वर्तमान स्थिति क्या है, हमको कोई समझाता भी है तो भी बहुत बार उसको ठीक से नहीं समझते हैं। समझाता व्यक्ति कुछ और है, समझने वाला कुछ और समझता है, और फिर वो कुछ और ही करता है। फिर अब वो व्यक्ति जिसने समझाया था वो कहता है, अरे तुमको मैंने कितनी बारी समझाया फिर भी आप उल्टा ही काम करते हो, क्यों? जानबूझ के नहीं, जानबूझ के नहीं, लेकिन उसने समझा ही ठीक नहीं, उसने समझा ही ठीक नहीं। लेकिन आप सोचिए, जब हम राइट समझते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे कर्मों में एक्यूरेसी होगी, मिस्टेक्स नहीं होंगी। संबंधों में जो मिस्टेक्स होती हैं उसका कारण है कि हम एक दूसरे को ठीक नहीं समझते हैं। एक व्यक्ति कुछ और कहता है, दूसरा व्यक्ति कुछ और सुनता है, वो एक भाव से कहता है, दूसरा दूसरे भाव से समझता है। तो जब हम समझ ही नहीं पाते एक दूसरे को तो हम वो कर्म नहीं कर पाते जो दूसरा हमसे आशा रख रहा है, और इसलिए संबंधों में टकराव हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है। सतयुग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सतयुग में इशारे से ही एक दूसरे को समझते हैं, और जब हम यहाँ योगी जीवन बना करके समझ लेते हैं तो हमारे कर्मों में एक्यूरेसी आ जाती है। इसलिए संस्कृत में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम्, योग से कर्मों में कुशलता आती है, मिस्टेक्स खत्म हो जाती हैं। सतयुग में मिस्टेक्स होती नहीं, सतयुग में होती है मिस्टेक, होती है? नहीं होती है। तो जब हम मिस्टेक से मुक्त हो जाएंगे तो कितना अंदर से संतुष्टता होगी। जो व्यक्ति मिस्टेक्स करता है क्या वो संतुष्ट होता है अंदर से? नहीं होता है, और दूसरे तो होते ही नहीं संतुष्ट उससे। और जब हमसे मिस्टेक्स नहीं होंगी तो हम भी संतुष्ट और दूसरे भी हमसे संतुष्ट, उसका रिजल्ट क्या होगा? अगर हम भी संतुष्ट, दूसरे भी संतुष्ट, कर्म भी एक्यूरेट, उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या होगा, क्या होगा, थोड़ा ऊंचा बोलिए, खुशी, प्रसन्नता, चीयरफुलनेस, हर्षित मुख। जहां संतुष्टता है वहां प्रसन्नता है, हम भी प्रसन्न और हमसे दूसरे भी प्रसन्न। जहां संतुष्टता नहीं है वहां प्रसन्नता हो नहीं सकती। और देवी देवताओं का चेहरा कैसा होता है, कैसा होता है? ऑलवेज हैप्पी, सदा प्रसन्न, हर्षित मुख, चीयरफुल। बाबा भी कहते हैं, बच्चे आपका चेहरा देवताओं जैसा हर्षित मुख होना चाहिए, और वो होता ही नहीं। कभी कभी तो होता है पर कभी कभी नहीं भी होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आत्मा अंदर से संतुष्ट नहीं है, या अपने से संतुष्ट नहीं है, या दूसरों से संतुष्ट नहीं है, या दूसरों को संतुष्ट नहीं कर पाती है, तो इसलिए वो खुशी आती नहीं। आर्टिफिशियली कितना मतलब स्माइल तो आप नहीं कर सकेंगे ना, वो तो सिर्फ फोटो के समय ही करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम जितना योग को अपने जीवन में अंदर लाते जाएं, जितना हम बाबा के समीप पहुंच जाएंगे उतना हम एक दूसरे के समीप आ जाएंगे। तो हम एक दूसरे को समझेंगे भी बिल्कुल ठीक, और हमारे कर्मों में भी कुशलता आएगी, और फिर हम भी संतुष्ट होंगे, हमसे दूसरे भी संतुष्ट होंगे, और हम दूसरों से संतुष्ट होंगे, उसका परिणाम होगा प्रसन्नता। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट में आप ये बात देखेंगे कि बाबा बहुत बार कहते हैं कि जब आप सतयुग में चले जाएंगे तो आपको ये ज्ञान भी याद नहीं रहेगा, है ना? याद नहीं रहेगा, आपको नहीं याद रहेगा कि स्वदर्शन चक्र क्या है, कल्प वृक्ष क्या है, हमको ये स्वर्ग की राजाई कहाँ से मिली, किसने हमको दी। दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि देवता पास्ट को याद नहीं करते हैं, यहां तक कि नॉलेज को भी याद नहीं करते हैं। देवता पास्ट को याद नहीं करते हैं, यहां तक कि नॉलेज भी उनको याद नहीं रहती है। जब हम योगी जीवन कहते हैं तो योगी जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि हम पास्ट को फुल स्टॉप लगाना सीखें। जब तक हमने ये लेसन नहीं सीखा अच्छे से, हमारा योग लग नहीं सकता। लगाने बैठेंगे योग, बाबा को याद करने बैठेंगे और वो पीछे की बातें याद आएंगी। कोई व्यक्ति याद आएगा जिसने कष्ट दिया होगा, कोई घटना याद आएगी, कोई परिस्थिति याद आएगी, कुछ न कुछ पीछे की बातें याद आएंगी। तो ये योगी जीवन क्या है? योगी जीवन का मतलब ये नहीं कि हम 24 घंटे कोई योग तपस्या में बैठे रहेंगे। योगी जीवन का अर्थ है कि जो बाबा ने हमको ज्ञान दिया है वो ज्ञान हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज होना शुरू हो जाएगा। हम कितनी बार सुनते हैं पास्ट इज पास्ट, बीती को चितवो नहीं। देवता क्या करते हैं? बीती का नहीं सोचते, वो आगे बढ़ते रहते हैं, बस आगे ही चलते हैं। हमें स्वर्ग जाने की तैयारी करनी है तो हमको पास्ट को डॉट लगाना सीखना पड़ेगा। अभी पूछना अपने आप से, कितनी बार हमने ड्रामा का ज्ञान सुना होगा, कितनी बार लोगों को समझाया होगा, लेकिन जब कोई ऐसी वैसी परिस्थिति आती है तो हम सारा पीछे का इतिहास निकालना शुरू कर देते हैं। हमको डॉट लगाना नहीं आता है। तो स्वर्ग जाने की तैयारी का तीसरा पॉइंट है, डॉट लगाना सीखें। इस लेसन को बहुत अच्छे से हमको सीखने की जरूरत है। चाहे मान लीजिए मैंने खुद अपने जीवन में बहुत मिस्टेक्स की हैं पास्ट में, बाबा का बनने से पहले या बाबा का बनने के बाद, क्योंकि प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट माना ये वाला मोमेंट, ये प्रेजेंट है, इस मोमेंट को प्रेजेंट कहते हैं। आज को भी नहीं, अभी जो अभी है वो प्रेजेंट है, जो इस अभी से पहले हो गया वो पास्ट है, एक मिनट पहले भी हुआ वो भी पास्ट है, ठीक है ना? और एक मिनट पीछे होगा तो वो फ्यूचर हो जाएगा, लेकिन अभी जो अभी है वो प्रेजेंट है, वर्तमान है। तो आज मुझसे या किसी से कोई गलती हो गई तो क्या करना है? क्या करना है? फुल स्टॉप। उसके लिए क्या करना है? स्वयं को क्षमा कर दें, दूसरे व्यक्ति को भी क्षमा कर दें, फुल स्टॉप। अब आगे चलो, अब इसके बाद मुझे वो गलती नहीं करनी है, हो गई, फिनिश्ड। अब सोचते रहे हो मेरे से हो गया, मेरे से हो गया, अब क्या होगा, कितना खराब हो गया, इसका नुकसान बहुत होगा, उससे तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो योग लगेगा ही नहीं हमारा। तो इसलिए ये नेक्स्ट पॉइंट है कि हम स्वर्ग जाने की तैयारी माना बीती को, बीती सचमुच में करना सीख लें, पास्ट को डॉट लगाना सीख लें। नेक्स्ट पॉइंट है, अब देवता स्वर्ग के वासी होते हैं, देवी देवता हैं, तो वो भी मनुष्य हाँ मगर कहलाते हैं देवता। और देवता का मतलब एक है जो दिव्य गुणधारी मनुष्य है उसी को देवता कहते हैं, ठीक है ना। मनुष्यों में और देवता में क्या फर्क है, उनकी भी दो आंखें हमारी भी दो हैं, उनके भी दो टांगे हमारी भी दो हैं, हाँ फर्क सिर्फ इतना ही है कि हम लोग दिव्य गुण धारण करने की पुरुषार्थ कर रहे हैं और वो लोग दिव्य गुणधारी हैं। लेकिन देवता शब्द का एक अर्थ ये भी होता है, देवता माना बहुत लोग कहते हैं देने वाला, बाबा कहते हैं आप देवता बन रहे हो, लेवता नहीं, लेवता नहीं, आप देवता बन रहे हैं, देने वाले बन रहे हैं। अब एक्चुअली तो सतयुग में किसी को कुछ देने की जरूरत ही नहीं, सबके पास सब कुछ है, सबके पास सब कुछ है। ऐसा नहीं कि किसी के पास धन कम है, किसी के पास अन्न कम है, किसी के पास जल कम है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। किसी के पास रहने का स्थान नहीं है, किसी के पास कपड़े कम है, किसी ऐसा तो कुछ है ही नहीं, सबके पास वहां सब कुछ है, मोर देन एनफ। तो किसी को कुछ देने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो देवता कहलाते हैं क्योंकि देना सीख कर वो देवता बने, उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत दिया। तो यही बाबा हमको सिखाते हैं कि योगी जीवन माना मास्टर दाता, दाता जीवन, बाबा दाता है ना, जैसा पिता वैसे बच्चे। बाबा तो लेता नहीं किसी से भी, बाबा तो दाता है, तो दाता के बच्चे भी दाता ही होते हैं, अर्थात किसी से भी वो कुछ नहीं मांगते। वो कुछ क्या है, हम लोग हम में से कोई यहाँ भिखारी तो है नहीं जो किसी से पैसा मांगेंगे या भोजन मांगेंगे या कुछ और मांगेंगे, भिखारी तो यहाँ पे है नहीं। वो मांगने की बात नहीं, उसकी बात नहीं, बाबा जो एक्चुअली जो कर्जा लेता है ना व्यक्ति, वो भी एक प्रकार से मांगने ही वाली बात है, बाबा ने उसके लिए भी मना किया हुआ है। बाबा कहते हैं कर्ज मर्ज है, वो बीमारी है, कभी भी कर्जा मत लो, ये भी मांगना ही हो जाता है। लेकिन मैं जिस बात पर कहना चाहती हूँ कि वो मांगना क्या होता है कि जब हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमें रिस्पेक्ट करे, कोई हमें स्नेह दे, कोई हमें सहयोग दे, कोई हमें आगे बढ़ाए, कोई हमारी पूछताछ करे, कोई हमें वैल्यू करे, कोई हमें मतलब ये जो अंदर की चीजें हैं ना, सूक्ष्म चीजें, जब हम मांगते हैं, बेशक शब्दों से नहीं मांगते होंगे लेकिन अंदर से अगर आशा रखते हैं तो ये भी मांगना है, तो हम देवता की बजाय लेवता बन जाते हैं कि अगर आप मुझे रिस्पेक्ट करेंगे तो फिर मैं भी करूं रिस्पेक्ट, अगर आप मुझे स्नेह दें तो फिर हम भी दें, अगर आप मुझे इज्जत दें तो हम भी आपको इज्जत दें। नहीं, बाबा ने हमको सिखाया है, क्या सिखाया है इसमें, क्या सिखाया है इसमें, पहले मैं, पहले मुझे देना है, दूसरा फिर कोई दे या ना दे मुझे परवाह नहीं, मुझे देना है। शिव बाबा इतना आके, अब मान लीजिए कल बाबा आए, कल बाबा ने इतना, बाबा जैसे बहुत क्लियरली देख रहे हैं सभी बच्चों के गले में, कितनी देखो चमकती हुई मालाएं हैं, चमकती हुई मालाएं, कितनी बार बाबा ने इस बात को बोला, और हम में से एक ने भी ये नहीं कहा कि बाबा हम भी आपके गले में कितनी चमकती हुई मालाएं देख रहे हैं, किसी ने भी नहीं बोला, सोचा भी नहीं होगा शायद। बाबा वो मालाएं क्या देख रहे थे, हमारे गुणों की मालाएं, हमारे शक्तियों की मालाएं, हमारी पवित्रता की माला, वही तो बाबा देख रहे थे ना। तो हमारे गले में वो मालाएं ज्यादा हैं या बाबा के गले में, किसके गले में ज्यादा है, बाबा के गले में, बाबा तो भंडार है। पर हम में से एक ने भी नहीं कहा 25,000 लोग बैठे थे, सबने एक आवाज में कहा होता, बाबा हम भी देख रहे हैं आपके गले में कितनी मालाएं। पर बाबा का मूड तो ऑफ हुआ ही नहीं कि मैं कितना कह रहा हूं, ये लोग फिर भी रिस्पांस नहीं देते, क्योंकि बाबा को उसकी जरूरत नहीं है। जो दाता है ना, दाता को किसी से भी कोई भी प्रकार की आशा नहीं होती है। तो स्वर्ग में जाने की तैयारी क्या है? दातापन के संस्कार को मजबूत बनाना। कल हम लोग आपस में, कुछ बहने बैठे थे वहां ज्ञान सरोवर में, तो एक बात बहुत अच्छी निकली कि हम लोग योगी, बहुत सारे गीत भी हैं, सहयोग के गीत हैं, हा? इसका स्वर्ग बनाए, इसमें भी सहयोग शब्द आता है, और हम योगी तो बन रहे हैं, लेकिन क्या हम सहयोगी भी बन रहे हैं? हम कहेंगे हाँ बन रहे हैं, हम लोग बाबा के कार्य में सहयोगी हैं, प्रदर्शनी समझाते हैं, मेला करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं, तो ये सहयोगी तो है। लेकिन बात इस सहयोग की नहीं, बात इस सहयोग की नहीं, बात किस सहयोग की? बहुत सूक्ष्म बात है कि अगर हम किसी में कोई कमजोरी देखते हैं, अब आंखें तो बंद नहीं कर सकते ना, कमजोरी माना तो कमजोरी दिखाई तो देती है, अब उस पर हम कितना फोकस करते हैं वो एक अलग बात है, या नहीं करते हैं, लेकिन किसी में कमजोरी है तो कमजोरी तो दिखाई देती है, है ना? कांटा है तो कांटा मालूम पड़ेगा ना, ये कांटा है, ये फूल है, ये फूल है, मालूम पड़ेगा। लेकिन हम उस आत्मा को अंदर से कितना सहयोग देते हैं कि उसकी कमजोरी निकल जाए, या उसकी कमजोरी को देखकर हम उसे क्रिटिसाइज करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसको पॉइंट आउट करते हैं कि तुम्हारे में ये कमजोरी है। तो जो वर्तमान समय सहयोग की आवश्यकता है, वो ये सहयोग की आवश्यकता है कि जब हम एक दूसरे में कोई भी कमी, कोई भी अवगुण, कोई भी कमजोरी देखते हैं, तो हमको ये संकल्प आए, अच्छा मेरे में ये कमजोरी नहीं है, तो मैं क्या करूं, क्या सहयोग दूं इस आत्मा को जो इसकी ये कमी कमजोरी निकल जाए। इसको कहते हैं दाता। बाकी वो तन मन धन से ईश्वरीय यज्ञ में हम सहयोगी बनते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं, और वास्तव में तो ये अपने भाग्य बनाने के लिए अपने आप से सहयोगी बनते हैं, अपने आप से सहयोगी बनते हैं, अपना भाग्य बनाते हैं। परंतु जब दूसरों से सहयोग की बात आती है, बहुत स्पेशली ब्राह्मणों के साथ, लौकिक के साथ चलो अभी न भी सोचें, ब्राह्मणों के साथ कि अगर हम किसी की कमजोरी को देखते हैं, हम क्या सहयोग दे सकते हैं कि उसकी कमजोरी निकल जाए। तो स्वर्ग जाने की जो तैयारी है वो ये है कि हमारे में दातापन का संस्कार बहुत बहुत सूक्ष्म रूप से भी मजबूत होता चला जाए, ये स्वर्ग जाने की तैयारी है। अच्छा, और इसके बाद और कौन सी तैयारी हमको करनी है? स्वर्ग में हम लोग जानते हैं, बाबा बहुत बार कहते हैं वहां पर एक मक्खी भी नहीं होगी, मक्खी मच्छर कोई कचरा गंदगी मिट्टी कुछ नहीं होगा। मतलब स्वर्ग माना एकदम, बाबा बहुत बार मिसाल देते हैं, किसी बड़े आदमी के घर में जाएंगे ना, तो वहां पर आप मिट्टी का कण भी नहीं देखेंगे। मुझे याद है बचपन में जिस जहां पर हम लोग रहते थे, एक परिवार था, तो वो जो घर की मालकिन थी, वो घर को ऐसा, उनका फर्श इतना साफ होता था, आप उसमें अपनी शक्ल देख सकते हैं जैसे कि शीशे का हो, एकदम साफ। तो स्वर्ग में तो संपूर्ण स्वच्छता होती है, ना बाहरी गंदगी और ना आंतरिक गंदगी, ना संकल्प गंदे होते हैं, ना दृष्टि गंदी होती है, ना वृत्ति गंदी होती है, ना फीलिंग्स गंदी होती हैं, और ना ही कोई बाहर में गंदगी होती है। तो इसलिए हमको जो स्वर्ग जाने की तैयारी करनी है वो एक ये तैयारी है कि कोई भी प्रकार का पॉल्यूशन, चाहे मेंटल पॉल्यूशन, चाहे नॉइज पॉल्यूशन, इमोशंस का पॉल्यूशन, कोई भी प्रकार का पॉल्यूशन हम में न रहे। मैं कहीं पर गंदगी नहीं फैलाऊं, बाहरी गंदगी भी, जहां मैं हूं वहां स्वच्छता है, ऐसा हो सकता है? चाहे मैं ट्रेन में हूं, चाहे मैं बस में हूं, चाहे मैं कमरे में हूं, चाहे मैं कहीं पे भी हूं, चाहे मैं सेंटर पे हूं, चाहे मैं अपने घर में हूं, कहीं पर भी हूं, सब जगह स्वर्ग जाने की तैयारी है ना। हमको ये स्वच्छता का, जब हम प्यूरिटी की बात करते हैं, तो आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की स्वच्छता, विदाउट पॉल्यूशन, स्वर्ग पॉल्यूशन फ्री दुनिया है। गाड़ियां भी पॉल्यूशन नहीं करती है, वहां गाड़ी होती है, कार होती है, वहां पर होती है, कार होगी वहां या नहीं होगी, या विमान होंगे, विमान होंगे तो विमान से भी धुआं नहीं निकलेगा ना वहां पर जो पॉल्यूशन करे, तो कोई भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं। तो यहां हमारे भी मन से कोई धुआं नहीं निकलना चाहिए। जब हम कोई भी किसी के प्रति कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं तो वो धुएं जैसा ही तो होता है ना, वो एटमॉस्फेयर को खराब कर देता है, एटमॉस्फेयर खराब कर देता है। बाबा ने 3 दिन पहले मुरली में कहा था सॉरी कि अपनी वृत्ति को इतना श्रेष्ठ बनाओ, अपनी वृत्ति को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि आपकी वृत्ति से अन्य योग्य और योगी बन जाएं। आप इमेजिन करिए कितनी ऊंची चीज है। अपनी वृत्ति को ऐसा श्रेष्ठ बनाओ कि आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से अन्य आत्माएं जो आपके संपर्क में आती हैं वो योग्य बन जाएं, योग्य वर्दी और योगी बन जाएं। तो कितना हमको यहाँ स्वच्छ करने की जरूरत है, हमको चेक करने की जरूरत है रोज रोज। आज कोई मिट्टी तो नहीं चली गई अंदर, कोई कचरा तो नहीं चला गया हमारे मन बुद्धि के अंदर, हमारी फीलिंग्स के अंदर? अगर चला गया तो उसको झाड़ू से साफ कर दें। अगर हमको यहां साफ करने की आदत पड़ जाएगी ना तो बाहर साफ सफाई हमको बहुत पसंद आएगी। न केवल हम ये सोचेंगे कि दूसरे लोग साफ करें, हम खुद भी सफाई मेंटेन करना पसंद करेंगे। ये स्वर्ग जाने की तैयारी है। इसलिए अब हमको ये देखना है कि वो योगी जीवन हमारा ऐसा हो, योगी जीवन ऐसा हो। तो उसके लिए कुछ बातों पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। मैं योग कैसे लगाएं वो आप सबको मालूम है, योग के मेथड्स, योग की क्लासेस भी बहुत सुनी है सबने, उसके ऊपर नहीं अभी बोलूंगी मैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे योगी जीवन में विघ्न बन जाती हैं, विघ्न बन जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि अभी अगर हमने पास्ट को डॉट लगाना नहीं सीखा तो हम अपने लिए स्वयं विघ्न बन जाते हैं, हम स्वयं विघ्न बन जाते हैं। अगर हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कुछ भी सूक्ष्म या स्थूल, तो हम अपने लिए स्वयं विघ्न बन जाते हैं, हमारा योगी जीवन नहीं रहता है। ऐसे ही कुछ और भी बातें हैं, जैसे एक बात उसमें से ये है, कोई भी अच्छा संकल्प जो हमको आता है, अच्छा संकल्प आता तो है ना, अच्छा संकल्प आता है ना, अच्छा संकल्प आता है, कोई भी अच्छा संकल्प आता है कोई अच्छा काम करने के लिए, उसको कभी पोस्टपोन ना करें। ये जो पोस्टपोन करने की आदत है ना, ये योगी जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। हम और सोचते हैं, मान लीजिए आज हमने प्लान बनाया कि हम जरूर, अभी जब तक हम मधुबन में है ना, कम से कम 4 घंटे हम योग अभ्यास जरूर करेंगे। लेकिन प्लान बना दिया इतने से इतने बजे तक, इतने से इतने बजे तक, इतने से इतने बजे तक, और फिर क्लास में आए अनाउंसमेंट हुआ कि इस समय पर फलाना प्रोग्राम है, या जिस पार्टी में आए हैं हम, उन्होंने कोई प्लान पिकनिक का, एक्सकर्शन का कुछ बना दिया, फिर हम सोचते हैं भाई इसको भी अब कैसे मिस करें, ये काम तो करना ही पड़ेगा, तो चलो योग को पोस्टपोन कर देते हैं। तो जो अच्छा संकल्प आता है पुरुषार्थ के लिए, हम उसको कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई बहाना को एक रियलिटी समझ करके उस अच्छे संकल्प को पोस्टपोन कर देते हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अपना रथ किस लिए बनाया? एक कारण जो था वो ये था कि उस आत्मा में गुरु की आज्ञा को इमीजिएटली फॉलो करने की आदत थी, इमीजिएटली उसको करना ही है, गुरु ने कहा उसकी आज्ञा सिरमाथे है। तो बाबा सतगुरु है, तो ब्रह्मा बाबा यानी दादा लेखराज कभी भी गुरु की आज्ञा को पोस्टपोन नहीं करते थे, कल करेंगे। तो शिव बाबा ने सोचा ये बिल्कुल ठीक है, आत्मा मेरी आज्ञा को भी ये पोस्टपोन नहीं करेगा, तो ठीक है मेरी आज्ञा को भी ये पोस्टपोन नहीं करेगा। तो देखिए ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा कितने नजदीक हो गए, इतना नजदीक कि हम उनको बाप दादा कहते हैं इकट्ठा। कितने वर्षों से ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म बदन में शिव बाबा के साथ में है, मतलब ऐसा चांस किसी को भी नहीं मिलता है कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा यहाँ एकदम नजदीक नजदीक, एकदम कितना क्लोज, कितने वर्षों तक, क्योंकि ब्रह्मा बाबा में अंतिम जन्म में भी वो संस्कार था कि कोई भी श्रेष्ठ कर्म को पोस्टपोन नहीं करना है। तो अगर हमारे में पोस्टपोन करने की आदत है तो उसको हमको विदाई दे देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए विघ्न बन जाती है, ये भी एक स्वर्ग में जाने की तैयारी है। बाबा कहते हैं अगर श्रेष्ठ कर्म को पोस्टपोन करेंगे ना, कल पर डाल देंगे, तो कल तो आएगा नहीं, आप लेट हो जाएंगे, तो स्वर्ग में आने में भी आप लेट हो जाएंगे, वहां पे भी फिर आप, स्वर्ग तो सतयुग है, त्रेता युग तो बाबा सेमी स्वर्ग बोलते हैं, तो इसलिए इस आदत को खत्म करें। दूसरा है, दूसरा इसका फॉर्म है लापरवाही। लापरवाही किस चीज की? कोई जैसे मान लीजिए हमारे में छोटी मोटी कोई कमी है, कोई छोटा मोटा अवगुण है, तो हम लोग उसको जैसे कैजुअली ले लेते हैं, कोई बात नहीं, अभी हम कोई संपूर्ण थोड़ी बने, अभी तो कोई भी संपूर्ण नहीं बना, सभी के अंदर तो कोई ना कोई कमी है, मेरे में भी एक कमी हुई तो क्या हो गया, चलो मेरे में कितने अच्छे गुण भी तो बहुत सारे हैं, मैं हम इतनी सेवा करते हैं, रोज ज्ञान क्लास करते हैं, रोज अमृत वेले उठते हैं, इतना हम पुरुषार्थ करते हैं, ये छोटी मोटी कमी की तो कोई बात नहीं। तो कभी कभी हम छोटी मोटी कमियों को निकालने में लापरवाह हो जाते हैं, छोटी सी कोई कमी होती है, चाहे वो छोटी सी कमी को जैसे इरिटेशन होता है, मान लीजिए गुस्सा नहीं करते हैं मगर अंदर अंदर इरिटेट होते हैं, हम जोर से नहीं बोलते हैं, हम ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति जोर से बोलता है या ज्यादा बोलता है तो हम इरिटेट होते हैं, हम समझते हैं वो गलत है क्योंकि वो जोर से बोलता है और ज्यादा बोलता है, और हम इरिटेट हो रहे हैं ये हमको पता ही नहीं चलता, ये हमारी कमी है, इस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं। तो जो अपनी छोटी छोटी कमियों को इग्नोर करने की आदत है ना, लापरवाह होने की आदत है, ये भी हमारे रास्ते में बहुत बड़ा विघ्न है। तो हमको ये भी चेक करने की जरूरत है कि मेरे में, क्योंकि बाबा ने तो हमारे में गले में बहुत सुंदर मालाएं देखी, तो अगर उन मालाओं के सुंदर चमकते हुए मोतियों में कोई कमी रूपी पत्थर आ जाएगा तो माला की वैल्यू कम हो जाएगी। इसको बाबा ने कल कहा था, अगर आपकी स्टेज ऐसे होती है, ऊपर नीचे होती है, तो फिर माला की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए बाबा ने ऐसा इशारा किया, ऐसा करो सब, ऐसा करो मना, ऐसा मना, दृढ़ता, दृढ़ संकल्प करो कि मुझे इस कमी को निकालना ही है, मुझे इस गुण को धारण करना ही है, मुझे अपने लक्ष्य पर पहुंचना ही है। दृढ़ता, बाबा ने बहुत पक्का कराया कि बिना दृढ़ता के सफलता नहीं होती है। हमको स्वर्ग में जाना है तो दृढ़ता के बिना कैसे जाएंगे। जगदीश भाई एक दफा सुनाते थे कि उन्होंने मम्मा से पूछा कि मम्मा 36 गुणों की लिस्ट में सबसे पहला गुण कौन सा है जिसको धारण करना जरूरी है सबसे पहले, उसके बाद फिर अन्य गुण। तो मम्मा ने एक मिनट के साइलेंस के बाद जवाब दिया उनको, दृढ़ता। कहा कि जिसमें मान लीजिए आपने अन्य गुण हैं 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 जितने भी गुण हैं, लेकिन अगर दृढ़ता नहीं है तो आज वो गुण है कोई परिस्थिति में वो गुण गायब हो जाएगा। आप में सहन शक्ति है, सहन करने का गुण है, सहनशीलता है, लेकिन अगर परिस्थिति थोड़ी ज्यादा हैवी हो जाएगी तो सहनशीलता और धीरज खत्म हो जाएगा क्योंकि दृढ़ता नहीं है। तो मम्मा ने ये जगदीश भाई को बोला कि सबसे पहला जो गुण धारण करने की जरूरत है वो है दृढ़ता, और उसको बाबा ने कल रिवाइज कराया। दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने लक्ष्य पर पहुंचना ही है। और एक और बात जो मुझे कहनी है इसमें कि कभी कभी कोई कोई ब्राह्मण अपने पुरुषार्थ के रिजल्ट से निराश हो जाते हैं। अमृत वेले कितने दिन से उठते हैं, एक भी बार योग नहीं लगा, रोज क्लास में जाते हैं इतने साल से, कुछ तो विशेष परिवर्तन आ ही नहीं रहा। मतलब अपने जब देखते हैं कि रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो निराशा आ जाती है, और वास्तव में निराशा बहुत खतरनाक चीज है। निराशा, होपलेसनेस, ये वो चीज है जो हार हुए बिना ही हार हो जाती है। अभी डिफीट हुई भी नहीं लेकिन हमने डिफीट को एक्सेप्ट कर लिया, तो हमको इसके लिए ये सोचना चाहिए कि ठीक है हम अमृत वेले रोज उठ रहे हैं, योग नहीं लग रहा, रोज क्लास में जा रहे हैं, परिवर्तन नहीं हो रहा, तो या तो मुझे अपने मेथड को चेक करना है, मेरा मेथड ठीक है या नहीं, अगर ठीक नहीं है मुझे बड़ों से सलाह लेनी है उसके लिए। लेकिन साथ साथ इस बात को याद रखना है कि कोई भी कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, एक्शन नेवर गोज वेस्ट। आज हम कर रहे हैं, एक महीने से अमृत पीने के लिए उठ रहे हैं, अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं हुआ, 2 महीने उठेंगे, 3 महीने, 4 महीने रिजल्ट निकलेगा। ये जो मेरा एक्शन है, सिंसियरिटी है कि हम रोज अमृत पीने उठ रहे हैं, बाबा उसको नोट कर रहा है, तो मेरी सिंसियरिटी का रिजल्ट बाबा मुझे देगा और मेरा योग अमृत वेले बहुत अच्छा लग जाएगा। लेकिन अगर हम एक महीना उठने के बाद निराश हो जाएंगे और सोचेंगे मेरा तो योग लगता ही नहीं, तो फायदा ही क्या उठने का, और उठना ही छोड़ देंगे तो फिर तो योग लगने की संभावना ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए तीसरी बात है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अपने जीवन से जिसको हमको निकालना है, वो है निराशा। तो एक है पोस्टपोनमेंट का संस्कार टालने का, दूसरा अलबेलेपन का, और तीसरा निराशा का संस्कार। ये 3 संस्कारों को हमको खत्म करना है क्योंकि इन 3 संस्कारों की स्वर्ग में जगह नहीं है, स्वर्ग में ये होते ही नहीं है। तो अगर हम इन 3 संस्कारों को खत्म करके अपने जीवन में जो बाबा की शिक्षाएं हैं उनको लाते जाएंगे, उसको ही योगी जीवन कहते हैं। प्रैक्टिकली आज अपने से पूछिए, अभी अभी बैठ के मुझे मुरली का कितने पॉइंट्स याद है, स्लोगन वरदान याद है, उसको मैंने प्रैक्टिकली किया या सिर्फ पॉइंट नोट किया, तो ज्ञान को जब हम प्रैक्टिकल में लाएंगे तो हमारा जीवन योगी जीवन कहलाएगा, और यही पुरुषार्थ है स्वर्ग में जाने की तैयारी का। ओम शांति।
चले घर।